जीवन समाधान।
नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल मित्रों, स्वागत है आप सभी का समाधान कार्यक्रम में एक बार पुनः। मित्रों, आप जानते हैं कि पहले के जमाने में राजा अपनी प्रजा की देखरेख करने के लिए कि वो सुखी हैं, दुखी हैं, क्या हालचाल है, और जाया करते थे गांव-गांव में और देखा करते थे कि कैसी स्थिति में वो हैं। एक राजा ऐसे ही भ्रमण पे निकले थे और एक गांव में जब वो पहुंचे तो उनके कुर्ते का एक बटन टूट गया। अब उन्होंने मंत्री से कहा कि भाई देखो, इस गांव में कोई दर्जी है क्या, क्योंकि मेरे कुर्ते का बटन टूट गया है, वो सी देगा, टांग देगा इस बटन को। अब मंत्री जी गए, ढूंढा, एक ही दर्जी थे उस गांव में, वो दर्जी वहां आए। महाराज ने पूछा कि क्या तुम ये बटन सी सकते हो, लगा सकते हो कुर्ते पे? दर्जी ने कहा, हाँ महाराज, ये तो मेरे रोज का काम है, मैं कर दूंगा, बटन तो आपके पास है ही, बस मुझे धागा ही लगाना है। अब दर्जी ने वो बटन जो है वो टांग दिया उनके कुर्ते पे। अब राजा ने कहा, बताओ मैं कितने पैसे दूं तुम्हें? दर्जी ने कहा कि महाराज, ये तो छोटा सा ही काम था, बटन तो आपके पास ही था, मैंने तो बस धागा लगाया है, तो मैं कुछ भी नहीं लेना चाहता, आप कृपया कुछ भी ना दें मुझे। लेकिन राजा तो राजा थे, उन्होंने कहा, नहीं नहीं, कुछ तो तुम्हें लेना ही होगा, मैं कितना दूं तुम बताओ। तो दर्जी के मन में आया कि मैं कहूं कि चलिए 2 रुपए दे दीजिए महाराज। लेकिन उन्होंने बोला नहीं दर्जी ने, तो लगा कि 2 रुपए बोल तो दूं लेकिन कहीं राजा को ये ना लगे कि ये कहीं बटन टांकने का 2 रुपए तो नहीं लेता मेरी प्रजा से, और 2 रुपए उस समय उस जमाने में बहुत ज्यादा हुआ करते थे। तो दर्जी ने अपना विचार त्यागा और कहा कि महाराज नहीं, मैं कुछ लेना नहीं चाहता, आप रहने दें। लेकिन राजा ने कहा कि नहीं नहीं, मैं कुछ ना कुछ तो तुम्हें दूंगा, चलो तुम नहीं मांग रहे हो। तो उन्होंने अपनी मंत्री की ओर मुख किया और कहा कि इस दर्जी को 2 गांव दे दो। तो दर्जी की तो आंखें बिल्कुल चौंधिया गईं, वो कहां 2 रुपए मांग रहा था और महाराज ने 2 गांव उसे दे दिए। तो मित्रों, कई बार ऐसा होता है कि इस सृष्टि के जो नियंता हैं, मालिक हैं, परमात्मा हैं, वो भी हमें बहुत कुछ देना चाहते हैं। हमारे मन में बहुत छोटी छोटी ख्वाहिशें होती हैं कि ये छोटा सा काम हो जाए, ये छोटा सा काम हो जाए, ये छोटा सा काम हो जाए। लेकिन यदि हम अपने आप को उन्हें अर्पित कर देते हैं, उनकी इच्छा पे छोड़ देते हैं, तो वो हमें भरपूर कर देते हैं, शायद जितना हम सोच भी नहीं सकते। इसीलिए शायद गीता में ये बहुत सुंदर बात आई है कि हे अर्जुन, तू केवल कर्म कर, फल की चिंता मत कर। यदि तू फल की चिंता करेगा तो परेशान भी होगा, इसीलिए कर्म कर, उसे मुझे अर्पित कर दे, मैं तुझे श्रेष्ठ फल दूंगा। तो क्यों ना हम भी कर्म करें और कर्म करके उसे परमात्मा को अर्पित कर दें, वो हमें इतना देंगे कि जीवन में कभी किसी चीज की कमी नहीं रहेगी, अभाव नहीं रहेगा। ऐसे सुंदर प्रसंग के साथ आज के समाधान की शुरुआत करते हैं, अभिनंदन करते हैं आदरणीय भ्राता जी का। भ्राता जी बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। भ्राता जी, परमात्मा हमें सचमुच बहुत कुछ देना चाहते हैं, लेकिन हमारे मन में लिमिटेशन होती है कि शायद इतना इतना इतना, और उसी में उलझ के शायद वो जो बड़ी चीज है वो हम अचीव नहीं कर पाते,
क्योंकि भक्त और मनुष्य परमात्मा की शक्तियों को पहचानते नहीं ना। उन्हें तो आज धन थोड़ा सा चाहिए तो वो कहेंगे प्रभु आज रोटी मिल जाए इतना तो दे दो।
जी जी।
उन्हें क्या पता कि उसके पास तो सागर के तुल्य भंडार हैं। समर्पित भाव से जिए, अपने को कर दे अर्पित उसको कि तुम जैसे चाहो हमारे जीवन को चलाओ, हमारा संपूर्ण जीवन, ये परिवार, ये बच्चे, सब तुमको अर्पित है, तो वो अच्छे से अच्छा कर देगा, अधिक से अधिक कर देगा, यही सत्य है।
बिल्कुल भ्राता जी, जो अध्यात्म के पद पे हैं उन्हें ये बात समझना थोड़ा सा सहज लगता है, और चूंकि उनका विश्वास भी होता है कि वो बैठे हैं, वो करेंगे और सचमुच बहुत कुछ करते हैं, प्राप्त करते हैं। लेकिन जो अध्यात्म से उतने ज्यादा नहीं जुड़े हुए हैं, कामकाजी हैं और सांसारिक हैं ये कह लें, उनके मन में ये भाव कभी पैदा नहीं होता या कम पैदा होता है कि करना तो हमें ही पड़ेगा ना, वो हमारे लिए क्या करेगा।
नहीं, ये तो वो जानते ही नहीं, यही सीखना और सिखाना पड़ेगा, इसको स्पिरिचुअलिटी कहते हैं। अध्यात्म का एक स्वरूप यही है, समर्पण भाव, और ये बहुत बड़ी चीज है। भक्ति काल से ही ये चलता आया है कि प्रभु पे अर्पित हो जाओ, हम हैं भी उसके बच्चे। देखिए, माँ बाप का सब कुछ तो बच्चों के लिए ही होता है, लेकिन बच्चे अगर अपनी ज्यादा चलाने लगे तो गड़बड़ हो जाती है ना। बच्चे अगर चरित्रवान न निकले तो भी गड़बड़ हो जाती है। वर्तमान परिस्थितियों में परिस्थिति बहुत ज्यादा है, रोज जब लोगों की बातें सुनते हैं तो लगता है कि क्या ऐसा होने लगा है। तो सचमुच ऐसे में ये जो समर्पण भाव है, और इसमें आ जाती है कि अपनी परिस्थितियां, अपनी चिंताएं, अपनी समस्याएं भी उसको अर्पित कर दें तो बहुत ही मदद मिलेगी उसकी।
जी जी, जहां तक परिस्थितियों की बात है, बोझ की बात है, तो जरूर देना चाहता है। लेकिन पहले भी शायद मैं आपसे पूछ चुका हूं कि व्यक्ति देता तो है लेकिन ये अनुभव नहीं होता कि उसने ले लिया, वो गठरी या वो बोझ अब तक मेरे पास ही बना रहता है, तो ऐसा क्यों होता है?
सत्य तो ये है कि देने वाला ये नहीं रियलाइज कर पाता कि वो किसके आगे दे रहा है बोझ मन के दिए, वो किसे दे रहा है, तो उसका ये अविश्वास कि पता नहीं वो मेरे बोझ हरेगा या नहीं, ये इस बात का परिचायक है कि वो व्यक्ति भगवान को और उसकी शक्तियों को पहचानता नहीं है। जबकि शिव बाबा ने स्वयं कहा है, जो बाप सारे संसार के बोझ उठाने वाला है क्या वो अपने बच्चों का बोझ नहीं उठाएगा। अभी ये बात उसने कह दी और सबने सुन ली, सुनने वालों में भी बहुत लोगों को अपने में विश्वास नहीं होता, कभी बाबा में संशय होता है कि पता नहीं कर्म तो हमने कर दिया, गलती तो हमने कर दी, बोझ तो हमने रखे ना सिर पर, अब वो क्यों हमारे बोझ हरेगा। लेकिन एक बच्चा जो अपने बाप को बहुत प्रिय है, वो अगर अपनी कोई चीज बाप को दे दे, गलती भी कराया हो ना, मान लो उसने तेज बाइक चलाई और एक्सीडेंट कर दिया, अभी बाप ये तो नहीं कहेगा ना उसको मारे पीटेगा क्यों तेज चलाई है, अब वो उसकी पूरी केयर करेगा ना।
जी,
यही बात हमारे परमपिता के संबंध में है, हम उसे पहचान लें, वो रियली क्या है, वो हमें कितना प्यार करता है, उसके चित्त में हमारे लिए कितनी कल्याण की भावनाएं हैं। वो नहीं देखना चाहता कि मेरे बच्चे दुखी हों, वो नहीं देखना चाहता कि मेरे बच्चे चिंताओं में जीवन जी रहे हों, नहीं तो वो भी तो सोचेगा ना, लोग कहे मुझे नहीं कहेंगे कि तुम पहले अपने बच्चों को तो खुश करो, तुम्हारे बच्चे ही परेशान हो रहे हैं, हमारे लिए तुम क्या करोगे, नेचुरल है ना। तो वो संपूर्ण मदद करता है अपनी संतानों को, बस जरूरत इस चीज की है कि हम उससे अपने को जोड़ें, उसको जानते जाएं। और ये बहुत अच्छी बात है कि पुनः उसने गीता ज्ञान देकर ये बताया कि मुझे तुम मेरे द्वारा ही जान सकते हो, मुझे पुस्तकों के द्वारा नहीं जाना जा सकता, मुझे शास्त्रार्थ आदि के द्वारा भी नहीं जाना जा सकता। हे अर्जुन, वहां भी कहा तो मेरे द्वारा मुझको जान। तो हम उसको जानते चलें और ये समर्पित भाव अपनाते चलें तो बस हमारा जीवन आनंदित हो जाएगा।
लेकिन एक परमात्मा का महावाक्य है कि मैं जो हूँ जैसा हूँ वो विरले लोग ही जानते हैं और समझते हैं, तो इसका एग्जैक्ट भाव क्या है, क्या है वो, कैसा है, कैसे उसे एक सामान्य व्यक्ति समझ सकता है?
देखिए, एक चीज हुई कि उसकी पहचान, जैसे कहते हैं ना परिचय, वो हमें मिल गया, वही वो ज्योति स्वरूप है, ब्रह्मलोक का वासी है, निराकार है, वो देहधारी नहीं है, नाम उसका कल्याणकारी होने कारण शिव है, वो इस तरह इस धरा पर आते हैं, हमने वो सब चीजें जान ली। अब देखिए, जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं मोदी साहब, अभी बहुत सारे लोग कहेंगे भाई हम अपने प्राइम मिनिस्टर को जानते हैं, गुजरात के हैं, आरएसएस में रहे, फिर कैसे चीफ मिनिस्टर बने, बहुत अच्छे वक्ता हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं, देश के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे, करेंगे, ये सबको उम्मीदें जगी हैं। लेकिन वो कैसा व्यक्ति है, उसमें कितनी दृढ़ता है, उसमें देश के प्रति कितना डेडिकेशन है, यद्यपि उन्होंने ये बात कही भी, लेकिन उनकी जो आंतरिक खूबियां हैं उसे मनुष्य तभी जान सकता है जब वो उनके बिल्कुल पास रहे, और पास रहने के साथ दूसरों की महानताओं को जानने का विवेक भी उस मनुष्य के पास हो। कभी कभी पास रहने वाले क्या करते हैं, दूसरों के गुणों को भी अवगुण के रूप में मान लेते हैं, तो दूसरा कितना महान है उसकी महानता को पहचानने के लिए उस तरह का श्रेष्ठ विवेक भी होना चाहिए। हम भगवान को जानना चाहते हैं, परिचय के बाद उसकी रियल जानकारी, व्हाट इज द नेचर ऑफ गॉड, वो क्या करता है क्या नहीं करता, वो कैसे अपना स्वरूप प्रकट करता है, वो एक ही क्षण में क्या क्या कर सकता है, उसकी शक्तियां कितनी अनंत है, वो हमें कितना प्यार करता है, वो हमें क्या देखना चाहता है, ये सब वही मनुष्य जान सकता है जो उसके पास रहे। अब ये बड़ी सूक्ष्म बात हो गई, बुद्धि से मन से उसके पास रहना, और उसके पास रहने के बाद भी ज्ञान के द्वारा अपनी बुद्धि को सद्विवेक से भर देना, महानताओं से भर देना, क्योंकि एक महान व्यक्ति ही दूसरों की महानताओं को पहचान सकता है। जो व्यक्ति स्वयं महान नहीं है, उसे दूसरे की महानताएं समझ में नहीं आएगी। मान लो एक महापुरुष है, उसको लोगों ने बहुत सारे फ्रूट्स और बहुत सारी मिठाइयां दी। अब महापुरुष ने सोचा बच्चे बहुत आए हैं, सबको बांट देता हूँ। उन्हें फटाफट बच्चों को बांट दिया। एक व्यक्ति भी देख रहा है, अब वो चिढ़ रहा है, कैसा महात्मा, लोग इतनी मेहनत करके इसको ये सब देते हैं और देखो बांट रहा है, इसको अकल ही नहीं है। अब देखिए, थी वो उसकी महानता कि वो खुद न खा के सब बच्चों को या गरीबों को बांट रहा है, लेकिन देखने वाले के पास उसकी महानता को परखने की बुद्धि नहीं थी, तो उसने उसको उसकी कमजोरी समझा, अवगुण समझ लिया। वो जहां तक प्रचार भी करेगा, अरे उस महात्मा कुछ न देना, वो तो बांट देता है। ऐसे ही भगवान जो सबसे महान है, उसे बड़ा कोई नहीं। उसकी महानता को जानने के लिए हमें उसके समीप रहना होगा और उसके द्वारा ही दिए गए ज्ञान के द्वारा अपनी बुद्धि को इतना डिवाइन करना होगा कि उसे हम पहचान पाए। इसलिए योगियों में भी ज्ञानियों में भी ऐसी थोड़ी आत्माएं निकलती हैं। सबको उसका परिचय तो हो गया, सबने उसका प्यार भी पा लिया, बहुत अपने अपने अनुसार उसके समीपता को भी प्राप्त करते हैं, लेकिन एग्जैक्टली वो क्या है ये जब मनुष्य जान लेता है तो निश्चिंत हो जाता है। जब भगवान ने कह दिया मैं तुम्हें साथ दे रहा हूँ, डोंट वरी, फिर भी मनुष्य वरी करता है।
अब ये भी तो फैक्ट है कि पीएम के पास हरेक नहीं जा सकता, वो समीपता उसे नहीं मिल सकती, तो क्या यही चीज उसके सुप्रीम पीएम के साथ भी है कि उसके पास भी हरेक नहीं जा सकता रह सकता?
देखिए, उसके पास तो हरेक को जाने का अधिकार है और उसने ऐसा राजयोग सिखाया जिसको बुद्धि योग भी कहते हैं, कि मन बुद्धि से जो चाहे, जब चाहे और जितना समय चाहे उसके साथ रह सकता है। और जो निरंतर योग युक्त रहते हैं वो तो जैसे उसके साथ रहते हैं, उसके सम्मुख रहते हैं, तो वो अपनी पहचान खुद भी अनुभव कराने लगता है ऐसे श्रेष्ठ योगी को। तो ये तो सबको अधिकार है, मन बुद्धि से उसके पास रहना, उसके समीप रहना, उसे बातें करना, उससे सब कुछ लेना, ये हरेक को अधिकार है।
पता जी, मैं दूसरी बात पे आता हूँ। जो देने वाली हमारी बात हो रही थी, तो वो जो देना देना होता है वो देना नहीं हो पाता, वो अब तक मेरे पास ही रहता है, तो वो मैं मूल रीजन जानना चाहता था कि हम हमेशा सोचते हैं कि हम अपनी कमजोरियां, बुराइयां, अपने बोझ, गट्ठर जो भी हैं, सब कुछ परमात्मा को दे दें, लेकिन ऐसा संभव क्यों नहीं हो पाता, क्यों वो हमारे पास ही रह जाता है और हमें परेशान करता रहता है?
दो चीजें इसके पीछे दिखाई दे रही हैं। कुछ मनुष्यों में ज्यादा सोचने की आदत, यहाँ उनमें लैकनेस आ जाती है सेल्फ कॉन्फिडेंस की, बहुत ज्यादा सोचते हैं, बहुत ज्यादा सोचते हैं, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए, कहीं ये ना कर दे, कहीं बाबा ये ना कह दे तो तुम्हारे कर्मों का फल है, तुम्हें भुगतना है, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता, कहीं और कुछ ना होने लगे। एक तो ज्यादा सोचने की आदत है। हमने माताओं को देखा
जी,
जो कुछ नहीं सोचती, बिल्कुल जिन जो भावना प्रधान है, लो बाबा ये सब बोझ तुम्हें करना, आप सब कुछ, जैसे ऐसा लगता है वो भगवान को बांध लेती है कि तू करना ही पड़ेगा भाई। कई अनुभव आते हैं लोग, रोज आ जाते हैं ऐसे अनुभव। दूसरी चीज इसमें दिखाई देती है मैंपन, मैं और मेरा, ये बहुत सूक्ष्म रूप से जड़े जमा चुका है मनुष्य के अंतर मन तक, और इसकी जड़े इतनी दूर दूर तक फैल गई हैं कि एक साधारण व्यक्ति तो इसको समझ भी नहीं सकता, और ये उसके विवेक से परे की चीज है कि इनसे मुक्त होना भी चाहिए, और इनसे मुक्त कैसा हुआ जाए वो तो और बड़ी बात हो गई। जो राजयोग के पथ पर चल रहे हैं, जो अध्यात्म का मार्ग अपना चुके हैं, उनको मैं और मेरे से मुक्त होना ही होता है। उसे पता होता है ये दोनों उसको भारी करेंगे, मेरी जिम्मेदारी है, मन भारी, बच्चे की शादी हो रही है, मेरी सब जिम्मेदारी है, सब लोग संतुष्ट होकर जाएं, सबका लेन देन अच्छा हो, लड़के वाले भी खुश हो जाएं, मेरी बच्ची बहुत सुखी रहे, ये उसको भारी करता है, कहीं ऐसा ना हुआ तो क्या होगा। अभी इसी बात को यदि वो समर्पित कर दे अपने परम पिता पर कि तुम करण का अनहार हो, ये सब जिम्मेदारियां तुम्हारी, निमित्त बनकर हम ये कार्य कर रहे हैं, बट फाइनली यू आर रेस्पॉन्सिबल फॉर एवरीथिंग, तो देखेगा कि सब काम बहुत सहज हो जाएगा। तो ये मैं और मेरापन मन उसको भारी करता है, और वो स्थिति बनाता है कि मन का बोझ हम देते तो रहते हैं लेकिन वो अंदर से नहीं दिया जाता इसमें और मेरेपन के कारण। तो जैसे जैसे इसका त्याग होता जाएगा ये भाव सहज उत्पन्न होता जाएगा।
निमित्त भाव रखना बहुत ही अच्छा लगता है सुनने में, और ये भी कहा जाता है कि परमात्मा ही सब कुछ करा रहे हैं और वही कराएंगे, तो इस चीज को भी क्या यहाँ इस्तेमाल किया जा सकता है कि मैं जस्ट ट्रस्टी हूँ या निमित्त?
देखिए ये जो सिद्धांत है कि वो करण करावनहार है, उसी की शक्तियों से सब कुछ हो रहा है, ये प्राचीन काल से हमारे वेद और दर्शन और शास्त्रों के आधार से कहा गया है, लेकिन लोगों ने इसके रियल मीनिंग को नहीं समझा। क्या समझा? कि सब कुछ परमात्मा करा रहा, पाप भी वही करा रहा, दुख भी वही दे रहा, सुख भी वही दे रहा, पत्ता पत्ता वही, ये सब गड़बड़ हो रही, सब उसी की माया है ये। तो मनुष्य को सुधारने की कोई बात ही नहीं है, लेकिन परमात्मा ने आकर स्वयं ज्ञान दिया, आत्मा अलग परमात्मा अलग, आत्मा का अस्तित्व ही अलग है, आत्मा कर्म करने में स्वतंत्र है, उसको उस तरह का फल मिलने वाला है। संगम युग पर जब स्वयं भगवान नई सृष्टि रचने आते हैं, युग परिवर्तन के लिए आते हैं, तब वो अनेक आत्माओं को शक्तियां देकर और ज्ञान देकर कार्य कराते हैं। ये बात उस समय की है जब भगवान अपना दिव्य कार्य करने के लिए धरा पर आते हैं, इस समय की ये बात है। तो जो उसकी संतान हो गए, जिनको उन्होंने एडॉप्ट कर लिया, अब वो उसकी छत्र छाया में आ गए, उसको उनका ज्ञान मिल गया, शक्ति मिल गई, उनके द्वारा वो कार्य कराता है। तो ये फैक्ट उन सब के लिए है जो उनसे जुड़े हुए हैं। तो इसमें ही हम इस निमित्त भाव का प्रयोग करते हैं। मान लो हमें कोई बहुत बड़ा सेवा का कार्य करना है, हमें बहुत लोगों को भगवान का मैसेज देना है, या हमें बहुतों को राजयोग सिखाना है, तो कहीं कहीं इसमें जो मन भारी हो जाता है उसको हम इस तरह समाप्त कर लेते हैं कि करण करावनहार शिव बाबा बैठा है, वो आते ही सब कुछ ठीक करा लेगा। जो उससे जुड़ गए उनके कार्यों में उसकी निरंतर मदद मिलती रहती है। इसको निमित्त भाव कहते हैं कि हम सहज भाव से, निमित्त हम हैं, हमारे साथ परमपिता की शक्तियां कार्य करती हैं। तो बाबा जब साकार में थे तो एक बहुत सुंदर बात कही थी, मैं ये बात सुनाया करता हूँ, और मैंने भी इसकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस की, कि बाप बच्चों को बड़े कार्यों की जिम्मेदारी देते हैं, लेकिन जो अपनी जिम्मेदारी को पुनः बाप पर समर्पित करके कार्य करते हैं तो उनकी जिम्मेदारियों को बाप स्वयं पूर्ण करा देते हैं। तो बहुत ही सूक्ष्म चीज है ये निमित्त भाव धारण करना, और करण करावनहार परमपिता परमात्मा हमारे द्वारा सब कुछ कराएगा, इस बात को जानते हुए निश्चिंत रहना और उसके कार्यों को फुल डेडिकेशन से करना। देखिए एक है निश्चिंतता, दूसरा है केयरलेसनेस अलवेलापन, दोनों में बहुत अंतर है। निश्चिंत रहने वाला व्यक्ति बहुत पावरफुल होता है, केयरलेस रहने वाला व्यक्ति बहुत ठंडा आलसी ढीला ढाला होता है। तो हमें बाबा केयर फ्री बनाता है, केयरलेस नहीं, निश्चिंत बनाता है, लापरवाह नहीं।
जी तो ब्रदर जी, हमें हर कार्य में शायद सफलता प्राप्त होगी, मुझे ऐसा लगता है कि यदि कुछ भी कार्य करने से पहले हम ये सोच लें कि मैं आपके लिए कर रहा हूँ और ये आपको समर्पित है, बिन कार्य होने के बाद भी हम उसे ही अर्पित कर दें, तो शायद कार्य में असफलता का कहीं कोई मार्जिन ही नहीं रहेगा।
हर एक को, चाहे वो गृहस्थ में है या कुमार कुमारियां हैं, जो ज्ञान मार्ग पे चल रहे हैं, उन्हें ये आदत डाल लेनी चाहिए कि जब वो कोई भी कार्य शुरू कर रहे हैं तो मन में एक संकल्प ले ले, ये कार्य तुम्हारे लिए, बाबा से बातें कर ले थोड़ी देर, ये कार्य तुम्हारे लिए, और जब कार्य पूर्ण हो जाए या रात को एक साथ आज के सारे कार्य प्रभु अर्पण कर दो, तो किसी भी कार्य का मन पे बोझ नहीं रहेगा, इफेक्ट भी नहीं रहेगा। कभी कभी खराब काम कुछ हो गया, टेंशन आ गई, कहीं कोई दुख हो गया, वो तो अर्पित कर दे मनुष्य, लेकिन कहीं हमने बहुत अच्छी सफलता पा ली, कहीं हमारा बहुत नाम हुआ है, कहीं वाह वाह बहुत ज्यादा हुई है, उसको भी बाबा पर अर्पित, ताकि वो चीज हमारे मन में एक निगेटिव भाव पैदा न कर दे, थोड़ा भी अभिमान पैदा न कर दे। तो कर्म की शुरुआत इस फीलिंग से करें, सब कुछ तुम्हारे लिए, ये कर्म तुम्हारे लिए, और रात को कर्म और कर्म के परिणाम जो भी आए वो भी प्रभु अर्पित करके, जैसे हम उसकी गोद में सो जाते हैं लाइट होके, तो अगला दिन हमारे लिए बहुत फ्रेश, बहुत एनर्जेटिक होगा।
बाकी जो विद्यालय से नहीं जुड़े हुए हैं, कई अपने गुरुओं को मानते हैं, कईयों के मन में परमात्मा का अलग अलग स्वरूप है। हमारे यहाँ तो 33 करोड़ देवी देवताएं हैं और हरेक के अपने अपने वो हैं, जैसे ये मेरे इष्ट देव, ये मेरे इष्ट देव। तो जब हम समर्पित मैं कर रहा हूँ ये मैं कहता हूँ, तो मेरे सामने विजन क्या हो?
परम पिता के आगे समर्पित होना, ये रियल स्पिरिचुअलिटी है, जिसने हमें सब कुछ दिया। लोग ये मान लेते हैं हमारे गुरु ने सब कुछ दिया। हम भी कई प्रोग्राम देख लेते हैं कभी कभी, तो अपने गुरुओं के प्रति लोगों में बड़ी श्रेष्ठ भावना रहती है, वो सब ठीक है। जो जिसको मदद करेगा उसका तो मनुष्य कृतज्ञ रहेगा ही। अगर किसी बाबा ने किसी व्यक्ति की कोई समस्या हल ली और वो बहुत दुखी था, या उसके बच्चों की शादी नहीं हो रही थी, वो उसने मार्ग खोल दिया, तो वो व्यक्ति तो उसके लिए सब कुछ हो गया। लेकिन उन सबसे भी बड़ा वो है जो सबसे ऊपर है, जिसने श्रीमद् भगवद गीता में कह दिया कि इन सब के द्वारा मैं ही सबकी मनोकामना पूर्ण करता हूँ। किसी भी देवी देवता के द्वारा या किसी महान व्यक्ति के द्वारा अगर किसी की मनोकामना पूर्ण हो रही है, तो ये भी डायरेक्ट परमपिता के द्वारा ही हो रही है। इसलिए और किसी को इसमें अहम लाने की आवश्यकता नहीं कि मैंने इनकी मनोकामनाएं पूर्ण कर दी, इसकी जरूरत नहीं। ये धर्म में पतन की ओर मनुष्य को ले जाता है। भावनाएं कुछ समय तो रहती हैं लेकिन फिर बिगड़ जाती हैं। इसलिए अध्यात्म हमें ये सिखाता है कि जो सर्वोच्च है, जो तुम्हारा परम सद्गुरु है, जो गुरुओं का भी गुरु है, जो गुरुओं का भी सदगति दाता है, तुम सर्वस्व उसको समर्पित करो।
जी जी जी, मतलब अपने अंदर ये वाला अहम भाव नहीं लाना चाहिए, जो बीच में है, जो उससे जोड़ने वाले हैं, उन्हीं अर्पित करना,
उन्हें भी निमित्त भाव रखना है।
जी 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 दत्ता जी, कई बार ऐसा होता है कि बार बार मैं परमात्मा को दे रहा होता हूँ लेकिन वो अनुभूति यदि मुझे नहीं हो रही होती तो कई बार मन विचलन की स्थिति में आ जाता है। मेरा विश्वास थोड़ा डगमगाने लगता है कि मैं उसे अपना सब कुछ मानता तो हूँ, मैं अपना सब कुछ अर्पित तो करता हूँ, लेकिन फिर भी वो हल्कापन नहीं आ रहा है, वो भारीपन दूर नहीं हो रहा है, या मेरे कार्य सफल नहीं हो रहे हैं। तो यहाँ कई बार व्यक्ति का विश्वास डगमगा जाता है, तो ऐसी स्थिति में क्या सोचना चाहिए?
देखिए, बहुत अच्छी चीज ये है कि मनुष्य को अपने पुरुषार्थ पर स्वयं को डेडिकेट करना चाहिए। पुरुषार्थ करने में भी बहुत आनंद है। जो राजयोग का श्रेष्ठ पुरुषार्थ है वो सूखा नहीं, वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड या क्रिटिकल नहीं है, बड़ा आनंदकारी है। अनुभूति स्वतः ही मनुष्य को होती है। जैसे भोजन खा रहा है एक व्यक्ति, उसको पेट भरने की अनुभूति स्वतः ही होगी। कभी कभी डॉक्टर दवाई देते हैं लेकिन ये होता है कि 10 दिन तक दवाई कोई असर दिखाएगी नहीं, 11वें दिन से बहुत ज्यादा असर दिखाएगी। 10 दिन में जैसे वो ठीक करेगी अंदर सब कुछ, मनुष्य को पतन चलेगा कि अंदर ठीक हो रहा है, लेकिन उसको एकदम ठीक होने का अनुभव 10 दिन के बाद प्रारंभ होगा। ऐसे ये साधनाओं का मार्ग है। समर्पण करना चाहिए अपने को, रोज करते रहना चाहिए। हमें यह विश्वास रखना चाहिए कि ऐसा हो ही नहीं सकता, हमारे परम पिता और परम सद्गुरु की मदद हमें ना आ रही हो, वो आती ही रहती है। हम अपना जो पुरुषार्थ है, जो एक नेचुरल चीज है, उसको चालू रखें और परमात्मा की ये मदद हमें मिलती ही रहती है और हल्कापन हमारे पास दिनों दिन होता जाएगा। कोई अनुभव कुछ समय के बाद होता है, कोई तत्काल हो जाता है, हमें धैर्यवत होकर उसका इंतजार भी करना चाहिए,
मतलब अभ्यास करते रहना चाहिए। ये बात कही जाती है व्रता जी कि भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है, ये तो कहते हैं, तो ये देर क्यों है, मतलब वो देर क्यों लगाते हैं?
नहीं, वो देर नहीं लगाते, इसमें मनुष्य के अपने कर्मों की दीवारें सामने खड़ी रहती हैं। ऊपर से तो सब कुछ आता है लेकिन मनुष्य नहीं, कहीं अहम बहम का, कहीं किसी विकार का एक पर्दा ऊपर कर दिया होता है, उसके कारण वो मदद आने तक देर हो जाती है। परमात्मा को देर लगाने की आवश्यकता नहीं, वो देर क्यों लगाएगा? नहीं तो उसका भी हाल ऐसा ही हो जाएगा जैसे कोर्ट में करोड़ों केस पेंडिंग पड़े हैं, वो तो तत्काल मदद भेजता है।
जी जी जी, मतलब उनकी तरफ से कोई देरी नहीं है, उनके प्यार में कोई कमी नहीं है, लेकिन शायद कमी हमारी अपनी है जो हम ले नहीं पा रहे हैं या अनुभव नहीं कर पा रहे हैं। चलिए, आज के सुंदर प्रकाश के लिए व्रता जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत ही अच्छा लगा परमात्मा से जो समर्पण भाव पे, निमित्त भाव पे आपने प्रकाश दिया है, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। तो आपका जीवन निर्विघ्न रहे, सुख शांति से परिपूर्ण रहे, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ दीजिए आज के लिए इजाजत। नमस्कार।
धैर्य और दृढ़ मनोबल से कर दे तू पल भर में मुश्किलें आसान। पत्नी शंकरनी के पावन जल से स्वर्ग बन जाएगा सारा ये जहां।